नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। 17वीं विधानसभा के अंतिम सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। संसद का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। पटना में गंगा, सोन, पुनपुन, करड़ुआ, तरथा और धोवा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से दियारा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में। और आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की उमड़ रही है भीड़। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान विधानसभा और विधान परिषद की कुल 5 बैठकें होंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
17वीं विधानसभा के अंतिम सत्र के पहले दिन आज चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जबकि 22 और 23 जुलाई को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान होगा और सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। सत्र के दौरान 10 से ज्यादा विधेयकों के पेश होने की संभावना है। इधर मानसून सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक दल, SIR और राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। वहीं सरकार की ओर से भी कहा गया है कि हर मुद्दे का बिंदुवार जवाब दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वे प्रत्येक दल से अपेक्षा करते हैं कि सदन में प्रक्रिया के तहत मुद्दों को उठाया जाएगा। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सत्र के सुचारू संचालन को लेकर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सहयोग की अपील की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
संसद का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र है। एक रिपोर्ट।
मॉनसून सत्र के दौरान 17 विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की उम्मीद है। इन विधेयकों में जनविश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 सहित अन्य महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024, समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024, तटीय नौवहन विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि वह संसद में उठाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियम के अनुसार चर्चा करने के लिए तैयार है। सुपर्णा के साथ रहीसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र के दौरान निपटाए जाने वाले महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्य तय कर लिए गए हैं। संसद सत्र से पहले कल सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद श्री रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक बहुत ही रचनात्मक रही और सदन नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी पार्टी का रुख सामने रखा।
हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है।
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दावे, पहलगाम आतंकी हमला और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की मांग की।
हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें, लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है।
प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब मात्र 4% गणना प्रपत्र जमा होना शेष है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक 7,15,82,000 से अधिक मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 91% है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के 6 शहरों से स्प्रिट एयर विमान सेवा की शुरुआत करेगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बीरपुर और वाल्मीकिनगर से विमान परिचालन शुरू करने के लिए इस कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। स्प्रिट एयर पटना के पीटा और वाराणसी से इन हवाई अड्डों को जोड़ते हुए उड़ानों का संचालन करेगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से पूरे प्रदेश में आवागमन आसान होगा और इन क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन के विकास को नई गति मिलेगी। पटना में गंगा, सोन, पुनपुन, कररुआ, दरधा और धोवा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। वहीं मनेर में सोन नदी और श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर चला गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से तटवर्ती क्षेत्रों और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। एक रिपोर्ट।
गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से दियारा के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पानापुर घाट से कासिमचक, हेतनपुर, गंगहारा, अतलापुर और अकिलपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बख्तियारपुर के दियारा क्षेत्रों में भी गंगा नदी का पानी फैलने लगा है। इधर दरगाह नदी का जलस्तर बढ़ने से दनियावां और फतुहा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दनियावां, नगरनौशा, बिहार शरीफ NH-30A पर महात्मा माइन नदी का पानी चढ़ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ धनरुआ में कररुआ और दरगाह नदी का पानी 5 पंचायतों में प्रवेश कर गया है। इधर जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
इधर बक्सर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से तटवर्ती इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बेगूसराय के पलिया में भी गंगा नदी का पानी लगातार नए इलाकों में फैल रहा है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज गया जी और नवादा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के करीबनाथ, सोनपुर के हरियरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। शिक्षा विभाग ने विभिन्न कोटि के 3,432 पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला तबादला किया है। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इन शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन करेंगे। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4,361 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा की आवेदन तिथि में 22 अगस्त तक विस्तार किया है। इससे पहले यह तिथि 19 जुलाई तक निर्धारित थी। शिक्षक बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भागलपुर में आयोजित बिहार राज्य सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में भोजपुर की अर्पिता सिंह ने बालिका वर्ग में और नवादा के अंजिष्णु राज ने बालक वर्ग में खिताब अपने नाम किया। सुपौल के करजाइन थाना क्षेत्र के कोसपुर गांव से स्थानीय पुलिस और ईओयू की टीम ने साइबर ठगी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। पटना के करदनीबाग थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 1 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत तीनी लोदूपुर गांव के पास 2 ट्रक के बीच हुई टक्कर में दोनों चालकों की मौत हो गई। सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी मिथुन कुमार को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के रतनपुर गांव में बनास नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने संसद और बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आज से 5 दिनों तक चलने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार, युवाओं और कामगारों से जुड़े विधेयक होंगे पेश। प्रभात खबर ने लिखा है, मानसून सत्र आज से, सरकार बोली हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावों और बिहार में एसआईआर पर सरकार को घेरने की तैयारी। दैनिक भास्कर ने अपने विशेष रिपोर्ट में लिखा है, डॉक्टरों के 5,750 पद खाली पड़े, राज्य में 2,700 मरीज पर 1 डॉक्टर। दैनिक जागरण ने मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रमुखता देते हुए लिखा है, ईडी कोई ड्रोन या सुपर कॉप नहीं जो हर चीज की जांच करे। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, निजी वाहनों के लिए वार्षिक फास्टैग 15 अगस्त से। आज अखबार लिखता है, पटना में स्कूली बच्चों की परिवहन सुरक्षा के लिए बनेगी बाल परिवहन समिति। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। 17वीं विधानसभा के अंतिम सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। पटना में गंगा, सोन, पुनपुन, करड़ुआ, तरथा और धोबा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से दियारा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में। और आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की उमड़ रही है भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।